नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। सरकार ने काबुल में तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास किया। अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा का स्पष्टीकरण, नया $1,00,000 का H-1B वीजा शुल्क मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। सुश्री साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यूरोपीय संघ के देश जनवरी 2028 से रूस से सभी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। और बहरीन में एशियाई युवा खेलों में लड़कों की भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को और लड़कियों की टीम ने ईरान को हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निर्णय आपसी हित के सभी क्षेत्रों में अफगान पक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा की थी। वे 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर थे। मंत्रालय ने कहा है कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के व्यापक विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पहलुओं में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू $1,00,000 का H-1B वीजा शुल्क अमेरिका में पहले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों या मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में वैध वीजा पर रह रहे लोगों को भी इस शुल्क से छूट दी जाएगी, जिनमें F-1, L-1 और नवीनीकरण या स्थिति परिवर्तन चाहने वाले H-1B वीजा धारक शामिल हैं। इस स्पष्टीकरण से भारतीय विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। सुश्री साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुश्री ताकाइची को उच्च सदन में 125 वोट मिले, जो जीत के लिए आवश्यक साधारण बहुमत से सिर्फ एक वोट अधिक है। निचले सदन में उन्हें 237 वोट मिले, जो आवश्यक बहुमत 233 से ज्यादा है। पूर्व टेलीविजन एंकर सुश्री ताकाइची ने 1993 में राजनीति में प्रवेश किया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निचले सदन में पहुंची। 64 वर्षीय सांसद सुश्री ताकाइची वर्तमान में अपने गृह क्षेत्र नारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोटेगी तोशीमित्सु को जापान का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड्रिगो पाज परेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने दिवाली की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में भी फलती फूलती रहेगी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी फिलीपींस में विश्व बैंक द्वारा संचालित उच्च स्तरीय ज्ञान आदान प्रदान मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डेटा आधारित नीतिगत ढांचों से संबंधित क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के देश जनवरी 2028 से रूस से सभी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। कल लग्जमबर्ग में बैठक के दौरान यूरोपीय संघ के देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने इस संबंध में प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव रूस द्वारा यूरोपीय संघ के देशों को आपूर्ति किए जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस दोनों पर लागू होगा।
यूरोपीय परिषद के अनुसार यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति में बार बार रुकावट के बाद रूस की ऊर्जा पर निर्भरता समाप्त करने के लिए संघ के रीपावर ईयू रोडमैप के हिस्से के तहत ऐसा किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स अगार्ड ने इस प्रस्ताव को यूरोप को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप संघ के नेताओं ने 2022 के वर्साय घोषणा पत्र के अंतर्गत रूसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया था। हाल के वर्षों में रूस से यूरोपीय संघ में गैस और तेल आयात दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि 2025 में तेल का आयात 3% से नीचे गिर गया है। अभी भी यूरोपीय संघ 13% रूसी गैस आयात करते हैं। मई 2025 में आयोग ने शेष रूस के ऊर्जा आयातों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और यूरोपीय संघ की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए री पावर ईयू रोडमैप को अपनाया था। विश्व दर्पण के लिए मैं दिव्या तोमर।
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों और मानवाधिकार उल्लंघनों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी गुस्सा बढ़ने लगा है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन ने जर्मनी के हनोवर में विरोध प्रदर्शन किया।
बलूच प्रवासी प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों के लिए न्याय और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने की मांग करते हुए आंदोलन किया। जर्मनी के बलूच प्रवासियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के जहरी में हवाई और जमीनी दोनों तरह के हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई और कई गांव तबाह हो गए। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इन अपराधों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने और पाकिस्तान पर बलूच राष्ट्र के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज इसराइल पहुंचे, जो ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। इससे गाजा युद्ध विराम समझौते को मजबूत किया जा सकेगा और हमास के साथ संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिनापिक एसिड नामक एक प्राकृतिक पादप यौगिक की पहचान की है, जो मधुमेह के उपचार में अत्यंत प्रभावी हो सकता है। इससे मधुमेह की सुरक्षित प्राकृतिक और प्रभावी उपचार संभव हो सकते हैं। ये विश्व स्तर पर पहला अध्ययन है जो दर्शाता है कि सिनापिक एसिड के माध्यम से मधुमेह के घावों को भरने में तेजी लाई जा सकती है। इस शोध का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागालैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर ने किया और इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से रूपल दुबे, सौरभ सुरेन गर्ग, नवनीत खुराना और जीना गुप्ता शामिल थे। बहरीन के मनामा में एशियाई युवा खेलों में भारतीय लड़कों और लड़कियों की कबड्डी टीमों ने शानदार जीत दर्ज की है। लड़कों की टीम ने पाकिस्तान को 81-26 से और लड़कियों की टीम ने ईरान को 59-26 से हराया। भारतीय लड़कों की पाकिस्तान पर जीत अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने काबुल में तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास किया। अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा का स्पष्टीकरण, नया $1,00,000 का H-1B वीजा शुल्क मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। सुश्री साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यूरोपीय संघ के देश जनवरी 2028 से रूस से सभी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। और बहरीन में एशियाई युवा खेलों में लड़कों की भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को और लड़कियों की टीम ने ईरान को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।